ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, आज आप कुरान मजीद के सूरह निसा की 58वीं और 59वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। तिलावत का श्रेय प्राप्त किया है कारी शहात मोहम्मद अनवर ने।
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، نسندیہ ایشور تمہیں آدیش دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا دو، اور جب کبھی لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو نیائے سے فیصلہ کرو۔ نسندیہ ایشور تمہیں اچھے اپدیش دیتا ہے، نشچت روپ سے وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور کا آگیا پالن کرو، تتھا پیغمبر اور سوئم تم میں سے ایشور دوارا نردھارت لوگوں کا آگیا پالن کرو۔ یدی کسی بات میں تم میں وواد ہو جائے تو اسے ایشور کی کتاب اور پیغمبر کی اور پلٹاؤ، یدی تم ایشور اور پلے پر ایمان رکھتے ہو۔ نسندیہ وادوں کو سماپت کرنے کے لیے یہ پدھتی بہتر ہے اور اس کا انت ادھک بھلا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ آج شنیوار ہے، مہر کی 23، ربیع الاول کی 18 اور اکتوبر کی 15 تاریخ۔ شروع ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ صدق پات آپ انتراشٹریہ سماچار سنیں گے، اس کے پشچات آپ سنیں گے راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم، اس کے پشچات آپ نیترہین لوگوں کے سمجھ میں سنیں گے ہمارا وشیش کاریکرم، اور سبھا کا انتم اور ساپتاہک کاریکرم ہوگا اجوال بھوشیہ۔ شروتاؤ، یہ تو تھی ہماری آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی کھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ محمد مہدی سے سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ سانسکرتک پہچان ایرانی راشٹر کی طاقت کا سروت ہے۔ روسی راشٹرپتی نے کہا ہے کہ اگر ناٹو سینکوں سے ٹکر ہوئی تو ویشوک تباہی ہوگی۔ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ راج اپرسانگک قانونوں کو ختم کرنے پر وچار کریں۔ ترکیے میں کوئلے کی کھدان میں بھیشن وسفوٹ، 40 کی موت۔ اور اب وستار سے سماچار سنیے۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ سانسکرتک پہچان ایرانی راشٹر کی طاقت کا سروت ہے۔ اسی سمبندھ میں IRIB کے کانفرنس ہال میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں راشٹرپتی نے بھاشن دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ راشٹرپتی نے کہا کہ سانسکرتک حملہ کیول آج نہیں ہے بلکہ ہمیشہ تھا، اور یہ پہچان ایرانی راشٹر کو شکتی دیتی ہے۔ سماچار ایجنسی ایران پریس کی رپورٹ کے انوسار راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کی سمرد سنسکرت کو ہمیشہ ودیشی سنسکرتیوں سے خطرہ رہا ہے، اور ایران کی اسلامی کرانتی واستو میں ایک سانسکرتک کرانتی ہے، اور اسلامی گنتنتر ایران کی ذات میں ایک سنسکرت ہے، اور ایران سنسکرت پرگتی کے ساتھ وکاس کے مارگ پر اگرسر ہے۔ انہوں نے بل دے کر کہا کہ جس دیش کے پاس مضبوط سنسکرت ہے اسے سائبر یدھ کے طوفان کے جھٹکے ہلا نہیں سکتی۔ اسی پرکار راشٹرپتی نے کہا کہ اگر بنیاد و آدھار مضبوط ہے تو اس کی رکشا کی جانی چاہیے، اور تکنیک کے وکاس سے چنتت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر روز نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور چنتا اس سمے ہے جب راشٹریہ پہچان کے لیے خطرہ ہو۔ ایران کی اسلامی کرانتی فورس IRGC کے چیف کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ جو لوگ پرتبندھوں دوارا ایران کو نشکریہ کرنا چاہتے تھے وہ آج خود ہی الگ تھلگ پڑ گئے ہیں۔ ईरान के वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा प्रगति का उल्लेख करते हुए IRGC के चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि दिखावटी रूप से विकसित देशों और विश्व स्तरीय शक्तियों के समाज में अव्यवस्था और परेशानी पाई जाती है। हालिया दशकों में पश्चिमी देशों ने स्वतंत्र देशों पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। 1990 के दशक से अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों ने दूसरे देशों पर सैकड़ों बार प्रतिबंध लगाए हैं। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ही पश्चिमी देशों ने तेहरान के खिलाफ प्रतिबंध लगा रखे हैं और हालिया वर्षों में प्रतिबंधों को अधिक कड़ा कर दिया गया है। इसी संदर्भ में जनरल सलामी का कहना था कि प्रतिबंधों को हथकंडा बनाकर पश्चिमी देशों के शासक दूसरे देशों की संपत्तियों की लूटमार कर रहे हैं। ईरान के कुछ हिस्सों में होने वाले हालिया दंगों और हिंसक प्रदर्शनों के बारे में IRGC के कमांडर का कहना था कि ईरान की इस्लामी क्रांति को समय समय पर अपने बाहरी शत्रुओं से हिसाब चुकता करने की जरूरत है, क्योंकि इस्लामी गणतंत्र का विकास और मजबूती इन्हीं चुनौतियों में निहित है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूसी सेना के साथ नेटो सैनिकों की टक्कर वैश्विक तबाही होगी। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूसी सेना के साथ सीधे संपर्क या सैनिकों के साथ नाटो का सीधा टकराव एक बहुत ही खतरनाक कदम होगा जो वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये कहते हैं काफी समझदार हैं, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। वहीं व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मंगलवार को G7 राष्ट्रों ने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के गंभीर परिणाम होंगे। G7 राष्ट्रों यानी UK, जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और जापान के नेताओं ने कहा था कि हम जानबूझकर रूसी कदमों की निंदा करते हैं जिसमें जलाशयों की आंशिक लामबंदी और गैर जिम्मेदार परमाणु बयानबाजी शामिल है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। रूस द्वारा रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के क्षेत्र पर फर्जी दावा करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि ये कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कुचल देगा और हर जगह शांति राष्ट्रों की अवधारणा की उपेक्षा करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि फरवरी में शुरू होने वाले यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका ने सबसे ज्यादा यूक्रेन की सैन्य सहायता की है, जिससे मॉस्को काफी नाराज है। शुक्रवार को कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में एक सवाल के जवाब में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जब अगले महीने होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया। पुतिन का कहना था कि उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो हमसे ऐसी कोई बात करना चाहते हैं या नहीं। सच कहूं तो मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। राष्ट्रपति पुतिन कजाकिस्तान में पहले रूस मध्य एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में पुतिन ने भारत और चीन दोनों को अपना करीबी सहयोगी बताया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य अप्रासंगिक कारणों को खत्म करने पर विचार करें। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के समय के कई पुराने कानून अभी भी राज्यों में चल रहे हैं और आज़ादी के अमृतकाल में गुलामी के समय से चले आ रहे इन कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ सालों के भीतर देश में 1500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है और आज़ादी के अमृतकाल में राज्यों को भी اس مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے غلامی کے سمے سے چلے آ رہے تتھا اپرسانگک ہو چکے قانونوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اخل بھارتیہ سمیلن کے ادگھاٹن ستر کو ویڈیو سندیش کے مادھیم سے سمبودھت کرتے ہوئے بھارت کے پردھان منتری نے راجیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے راجیوں میں بنائے جانے والے قانونوں کی بھاشا پر دھیان کیندرت کریں تاکہ غریب سے غریب بھی نئے بننے والے قانون کو اچھی طرح سمجھ پائیں۔ یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ کانگریس کے پورو ادھیکش راہل گاندھی نے اتر پردیش میں پرارمبھک یوگیتا پریکشا پی ای ٹی میں 37 لاکھ سے ادھک یواؤں کے آویدن کو لے کر شنیوار کو آروپ لگایا کہ پردھان منتری نریندر مودی آنکھیں مود کر بیٹھے ہیں اور نوجوان ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہیں۔ راہل گاندھی نے ٹرین کی ایک بوگی کے ابھیارتھیوں سے خچاخچ بھرے ہونے سے جڑی تصویر ساجھا کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ان یواؤں کو سالانہ 2 کروڑ روزگار کا جھانسہ دیا گیا تھا، لیکن اس تصویر میں دیش کے شکشت بے روزگار یواؤں کی بے بسی دکھ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے آروپ لگایا کہ یہ صاف ہے کہ پردھان منتری آنکھیں بھوت کر بیٹھے ہیں اور نوجوان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اسی بیچ کانگریس مہاسچیو پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی کچھ ایسی ہی تصویریں ٹویٹر پر ساجھا کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی پر نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش پی ای ٹی پریکشا میں بھاری اویوستھا کے چلتے چھاتر چھاتراؤں کو ہو رہی پریشانی دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن بھاجپا سرکار کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ یوا ویرودھی سرکار یوواؤں سے پریکشا لینے کے لیے موٹی فیس تو وصول کرتی ہے، لیکن نہ نوکری دے پاتی ہے نہ اویوستھا سے مکتی۔ ترکی میں کوئلہ کھدان میں دھماکہ، 40 کرمیوں کی موت ہو گئی۔ ترکی میں کوئلہ کھدان میں وسفوٹ سے 40 لوگوں کی موت ہو گئی اور درجنوں لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ گھٹنا دیش کے بارٹین پرانت کی ہے۔ راحت کار جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس سمے دھماکہ ہوا تب 100 سے ادھک لوگ کھدان میں کام کر رہے تھے۔ آشنکا جتائی جا رہی ہے کہ دھماکہ کھدان میں جلن شیل گیس کے چلتے ہوا۔ فی الحال گھائلوں کا اپچار جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے انوسار ترکی کے سواستھ منتری نے بتایا ہے کہ 11 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور ان کا اپچار جاری ہے۔ وسفوٹ کے سمے قریب 110 لوگ کھدان میں کام کر رہے تھے، ان میں سے ادھکانش 300 میٹر کی گہرائی میں موجود تھے۔ انہوں نے بچاؤ کار سے جڑے کچھ ویڈیو بھی پوسٹ کیے ہیں۔ سواستھ منتری نے گھٹنا کے تار کھدان میں ملنے والی جولنشیل گیس سے جوڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شروعاتی آکلن سے سنکیت ملے ہیں کہ یہ دھماکہ سمبھاوت روپ سے فائر رینڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں بلوچستان اچ نیالے اور سنگھیے شریعت نیالے کے پورو مکھیہ نیادھیش محمد نور مسکانزئی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے۔ شکروار رات ان کے گرہ نگر قارن میں اگیات بندوق دھاریوں نے انہیں اس وقت گولی مار دی جب وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ فائرنگ میں گمبھیر روپ سے گھائل ہونے کے بعد انہیں علاج کے لیے استھانی اسپتال میں لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا۔ بلوچستان کے مکھیہ منتری میر عبد القدوس نے حملے کی نندا کی ہے اور کہا ہے کہ پورو نیادھیش کو چرم پنتھیوں نے نشانہ بنایا ہے۔ ایک امریکی سینیٹر کے مطابق ایسی پربل سمبھاونا ہے کہ واشنگٹن ریاض کو نئے ہتھیاروں کی آپورتی روک دے۔ امریکہ دوارا سعودی عرب کو ہتھیاروں کی آپورتی روکنے کے بارے میں اٹکل بازی ایسی استھتی میں جاری ہے جب شکروار کو یوکرین کے پردھان منتری نے سعودی عرب دوارا ان کے دیش کو 400 ملین ڈالر کی مانوی سہایتا دینے کی گھوشنا کی ہے۔ اس بیچ جو بائیڈن پرشاسن نے سعودی عرب کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ امریکہ اوپیک پلس دوارا تیل کے اتپادن میں کٹوتی کو لے کر سعودی عرب کے فیصلے سے خفا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
दोस्तों, विश्व सफेद छड़ी दिवस पर विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। सदियों से नेत्रहीन चलने फिरने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आज प्रतीक के रूप में जिस सफेद छड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, उसका चलन पहले विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ। 1921 में ब्रिटेन के शहर ब्रिस्टल के फोटोग्राफर जेम्स बिक्स की एक घटना में आंखें चली गई थीं। बिक्स ने सड़कों पर ट्रैफिक से बचने और रास्ता चलने के लिए सफेद छड़ी का इस्तेमाल किया ताकि लोग इसे दूर से ही देख सकें। वो एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहां ट्रैफिक ज्यादा होता था, इसलिए उन्होंने सफेद छड़ी को चुना ताकि रात में ड्राइवर दूर से ही इसे देख सकें। कुछ समय बाद ही बिग्स की ये जादुई छड़ी आम हो गई। पहले विश्व युद्ध में अपनी आंखें खोने वाले 5,000 नागरिकों और सैनिकों ने सुरक्षित रूप से रास्ता चलने के लिए सफेद छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसी दौर में अमरीका में लॉयन क्लब इंटरनेशनल ने इस छड़ी को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। शुरुआत में ये एक लकड़ी की सामान्य सफेद छड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज जिस छड़ी का चलन है, उसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉक्टर रिचर्ड हुवर ने डिजाइन किया था। ये युद्ध में घायल होने वाले और अपनी दृष्टि खोने वाले सैनिकों में अधिक लोकप्रिय हुई। डॉक्टर हुवर का मानना था कि शहरों में रास्ते पर चलने के लिए पुरानी शैली पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस छड़ी में कुछ बदलाव किए और इसे नए सिरे से डिजाइन किया। ये प्लास्टिक की एक हल्की छड़ी है जो फोल्ड हो जाती है, जिसके कारण इसे रखना आसान हो गया है। हम अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने और उसे देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग देखने की क्षमता नहीं रखते, वास्तव में सफेद छड़ी उनके हाथों को लंबा बना देती है ताकि वे स्थिति का आकलन कर सकें और सुरक्षित रूप से और आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ा सकें। सफेद छड़ी ऐसे लोगों को बाधाओं से बचाने, चरणों की खोज करने, फुटपाथ पर रुकावटों, खड्डों या असमान जगहों पर कदम रखने, दरवाजा खोलने, कारों और बसों में सवार होने और कई तरह के कार्य करने में मदद करती है। 1931 में फ्रांस में गुइली हीडबॉर्ड्स ने नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय सफेद छड़ी आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी बाद में अमरीकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने अपने देश में भी घोषणा की। 1950 के दशक में नेत्रहीनों के अधिकारों के लिए लड़ने और सफेद छड़ी का इस्तेमाल करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने एक अभियान शुरू किया। उसके आग्रह पर 1950 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने एक संयुक्त बैठक में व्हाइट केन कानून की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी। यूनेस्को ने 15 अक्टूबर को विश्व व्हाइट केन सेफ्टी डे मनाने का संकल्प लिया। व्हाइट केन कानून समाज में नेत्रहीनों की एक नई छवि पेश करती है। नेत्रहीन लोगों को अपने हितों की रक्षा के लिए इस कानून के सभी प्रावधानों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। सफेद छड़ी दृष्टि बाधित लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाती है। ये दिवस अंधेपन की रोकथाम और नेत्रहीनों की मदद करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर रोशनी डालता है। 80% अंधापन रोके जाने योग्य या उपचार योग्य होता है। 5 में से 4 लोग ऐसे अंधेपन से पीड़ित हैं जिसे रोका या उसका उपचार किया जा सकता है। 2015 में प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में 253 मिलियन लोग दृष्टिहीनता से पीड़ित हैं, 36 मिलियन लोग दृष्टिहीन हैं, 217 मिलियन लोग गंभीर या मध्यम दृष्टि से नुकसान से पीड़ित हैं। नेत्रहीन लोगों में 55% महिलाएं हैं। विश्व सफेद छड़ी दिवस नेत्रहीनों के मामलों को वैश्विक स्तर पर उठाने और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसका मकसद आम लोगों को दृष्टिबाधित लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों से अवगत कराना है, ताकि इन लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जा सके। आज आप कम ही सड़क पर चल रहे या रास्ते से गुजर रहे ऐसे किसी नेत्रहीन को देखेंगे जिसके हाथ में सफेद छड़ी न हो। मानव समाज में हमेशा ही कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हर तरह की रुकावटों को अपने रास्ते से हटाया है या उनका समाधान निकाला है। विकलांग समाज में भी हमेशा से ही कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। हालांकि कुछ लोग सिर्फ विकलांगों और नेत्रहीनों की इस कमजोरी पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और इन लोगों की असामान्य क्षमताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम अपने चारों ओर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि ऐसे नेत्रहीनों की कमी नहीं है जो जिंदगी में सफल रहे हैं और उन्होंने असामान्य काम अंजाम दिए हैं। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जिसने अपने कार्यों और सिद्धांत के बल पर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम की है। केलर के जीवन में आने वाली मुश्किलों ने उनकी हिम्मत और साहस के सामने घुटने टेक दिए, जिस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में लोग सोचकर ही खौफ खाते हैं। उन परिस्थितियों में हेलन केलर ने न सफल जीवन व्यतीत किया बल्कि हिम्मत की एक मिसाल कायम की। उनका जन्म 27 जून 1980 को अमेरिका के अलाबामा राज्य के टस्कम्बिया में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ थीं। जब वो 19 महीने की थीं, तब उन्हें जानलेवा तेज बुखार हुआ। कुछ दिन के उपचार के बाद वो ठीक तो हो गईं, लेकिन उस बीमारी के कारण वो अपनी सुनने, बोलने और देखने की शक्ति खो चुकी थीं। अब हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती थी कि उनको शिक्षा कैसे दी जाए। कौन ऐसा शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाएगा और हेलन केलर उसे समझ पाएंगी। ये चुनौती इसलिए बहुत बड़ी थी क्योंकि वो सामान्य बच्चों से अलग थीं और बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ थीं। केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद एक दिन उनकी मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल अनेग्रस से हुई। डॉक्टर अनेग्रस ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलाया जिसका नाम था एनी सुलिवान। एनी जब केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची तो उन्होंने वहां एक बहुत ही जिद्दी और अड़ियल लड़की को पाया। एनी ने केलर के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि वे अपनी लड़की को असहाय और लाचार न समझें और उसे सीखने के लिए उनके साथ अकेला छोड़ दें। केलर के माँ बाप ने एनी की बात को समझा और उन्हें इसकी अनुमति दे दी। एनी ने केलर को पढ़ाने के लिए नई शैली अपनाई और केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लगी। कुछ दिनों बाद हेलन केलर का मिजाज बदलने लगा और वो हंसमुख, विनम्र और सरल स्वभाव की हो गई। एनी ने केलर को सिखाने के लिए मैन्युअली अल्फाबेट यानी केलर के हाथ पर पानी का संकेत बनाया और फिर उनके हाथ पर पानी का गिलास रख दिया। इसी तरह से एनी ने हेलन केलर को पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया। उसके बाद एनी ने केलर के माँ बाप को सुझाव दिया कि अब वे उन्हें नेत्रहीनों के इंस्टीट्यूट में दाखिल कर दें और जहाँ उनकी शिक्षा आगे बढ़ सके। इस इंस्टीट्यूट में केलर ने 6 साल तक ब्रेल लिपि सीखी। 1904 में उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें लिखने का शौक पैदा हुआ और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रेल लिपि में कई किताबें लिखी और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेरे जीवन की कहानी। उनकी ये पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध हुई। केलर ने यह साबित कर दिया कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और जीवन में सफल होने से नहीं रोक सकती। वो एक लेखिका के साथ ही एक कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। सफेद छड़ी दिवस का मूल संदेश नेत्रहीनों की आवाज को सुनना और उनकी मांगों और अधिकारों को समझना है, ताकि वे एक स्वस्थ, सफल और सुखी जीवन जी सकें। हमें उनकी तार्किक मांगों को सही ढंग से समझकर उनके लिए स्वाधीन जीवन के लिए भूमि प्रशस्त करनी चाहिए, ताकि समाज का ये वर्ग जीवन की दौड़ में पीछे नहीं छूट जाए। सफेद छड़ी देखने की क्षमता रखने वाले हर एक व्यक्ति को याद दिलाती है कि नेत्रहीन लोग भी दूसरे लोगों की तरह दूसरों की मदद के बिना सामाजिक जीवन जी सकते हैं। अनेक लोग शारीरिक कमजोरी के बिना पर छड़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ सफेद छड़ी है जो समाज में जीवन का प्रतीक बन गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, तकनीकी खराबी के कारण आप राजनीतिक समीक्षा का कार्यक्रम समय पर नहीं सुन सके, जिसके लिए हमें खेद है। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नेत्रहीन लोगों के बारे में, हमारा विशेष कार्यक्रम, और अब सुनिए राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम।
श्रोताओं, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अहमद अब्बास।
राजनीतिक चर्चा।
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे इराक के राजनीतिक घटनाक्रम पर। ब्रिटेन के वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा है, ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। भारत नियंत्रित कश्मीर में जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने घाटी के हालात पर अपना दृष्टिकोण रखा है, ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं इराक के राजनीतिक घटनाक्रम से। इराक में गतिरोध के बाद आखिरकार नए राष्ट्रपति का चयन कर लिया गया, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री को भी मनोनीत किया गया है, जो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
लंबे अंतराल के बाद इराक की संसद ने अंततः नए प्रधानमंत्री का चयन कर ही लिया। एक वर्ष के राजनीतिक गतिरोध के बाद मोहम्मद शिया अस्सुदानी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया। इराक में अक्टूबर सन 2021 को संसदीय चुनाव आयोजित कराए गए थे। पिछले एक वर्ष के दौरान केवल मोहम्मद अल हलबूसी ही इराकी संसद से संसद सभापति के रूप में दो बार विश्वास मत हासिल करने में सफल हो पाए। पिछले एक वर्ष से इराक में बरहम साले राष्ट्रपति और मुस्तफा काजमी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। संसदीय चुनाव के आयोजन के एक वर्ष के बाद कुर्दों के दो प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक खींचातान के बावजूद 13 अक्टूबर सन 2022 को राष्ट्रपति पद के चयन के लिए मतदान करवाया गया। इस मतदान में अब्दुल लतीफ रशीद को 162 मत पड़े और वे आधिकारिक रूप से इराक के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए। अपने चयन के बाद इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद ने मोहम्मद शिया अस्सुदानी को नए मंत्रिमंडल के गठन का जिम्मा सौंप दिया। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल लतीफ रशीद के चयन ने कुर्दों के दो महत्वपूर्ण दलों के परस्पर मतभेदों को एक किनारे रख दिया। इराक के संविधान के अनुसार इस देश का राष्ट्रपति कुर्दों में से होना चाहिए। नए राष्ट्रपति के चयन को लेकर इराक के कुर्दों के राजनीतिक दलों में गंभीर मतभेद चले आ रहे थे। عبداللطیف رشید کے نئے راشٹرپتی بننے کے ساتھ ہی عراق کی کرد ڈیموکریٹک پارٹی کے پرمکھ مسعود بارزانی نے ٹیلی فون کے مادھیم سے ان کو بدھائی دیتے ہوئے ان کے کھلے سمرتھن کی بات کہی ہے۔ انہوں نے آشا جتائی ہے کہ عراق اب راجنیتک پرکریا میں سکاراتمک قدم بڑھائے گا۔ عراق کے نئے منتری منڈل کے لیے عبداللطیف رشید کی اور سے محمد شیا السودانی کا چین اس بات کا پریچائک ہے کہ اس دیش میں بڑے سنسدیے دل کا گٹھن شیوں کے سمنوے سے ہی سمبھو ہے۔ یہ واستوکتا ہے کہ اگر وہاں پر شیوں کی اور سے یوگدان نہ کیا جائے تو نئے راشٹرپتی کا چین لگ بھگ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس پرکار مصطفیٰ الکاظمی کی ذمہ داری سماپت ہو رہی ہے اور نئے منتری منڈل کا گٹھن السودانی کریں گے۔ یہ کام صدر دھڑے کے لیے بڑی پراجے ہے جو پچھلے ایک ورش کے دوران عراق میں نئے پردھان منتری کے چین اور منتری منڈل کے گٹھن میں طرح طرح سے بادھائیں ڈالتا آ رہا تھا۔ عراق میں نئے راشٹرپتی کے چین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دیش کو راجنیتک سنکٹ سے نکالنے کے لیے وہاں کے راجنیتک دل ایک جٹ ہو گئے ہیں۔
برٹین میں پردھان منتری لیز ٹرس کے وت منتری کو تیاگ پتر دینا پڑا ہے، وہ دو مہینے بھی اس پد پر نہیں رہ سکے۔ جائزہ لے رہے ہیں سید میسم۔
برٹش پردھان منتری لیز ٹرس نے ایک مہینے میں ہی وت منتری کوازی کوارٹینگ کو ان کے پد سے برخاست کر دیا ہے۔ صرف 38 دن پہلے وت منترالے کا پد بھار سنبھالنے والے کوارٹینگ نے اپنے استعفے کی ایک کاپی ٹویٹر پہ بھی ساجھا کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منتری ٹرس نے ان سے استعفی دینے کے لیے کہا ہے۔ دراصل جب سے لیز ٹرس نے پد بھار سنبھالا اس کے بعد سے سرکار آرتھک مورچے پر پست نظر آ رہی ہے۔ کواسی کوارٹینگ کی جگہ اب پورو کیبینیٹ منتری جیرمی ہنٹ کو وت منتری بنایا گیا ہے۔ ٹرسٹ سرکار کا حال ہی میں منی بجٹ پیش ہوا تھا جو مہنگائی پر قابو پانے میں وفل ثابت ہوتا دکھا۔ اس کے بعد کئی سانسدوں نے پردھان منتری ٹرسٹ کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ وت منتری کوارٹینگ کو اگر نہیں ہٹایا گیا تو انہیں سرکار میں بغاوت جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ برٹین میں بے قابو مہنگائی نے لوگوں کو بے حال کر رکھا ہے اور پاؤنڈ ڈالر کے مقابلے میں دن پرتی دن گر رہا ہے۔ منی بجٹ میں ٹرسٹ سرکار نے ٹیکس کٹوتی کی تھی، لیکن مڈل کلاس کو 19% جبکہ امیروں کو 45% کی چھوٹ دے دی۔ اس کے علاوہ برٹش پاؤنڈ ڈالر کے مقابلے میں 50 سال کے نیونتم استر پر پہنچ گیا۔ حالانکہ اپنے پد سے برخاست کیے گئے کوارٹینگ نے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ آرتھک وکاس کو لے کر ان کا درشٹیکون صحیح تھا اور وہ ابھی بھی اس کا سمرتھن کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پردھان منتری ٹرسٹ کچھ ہی گھنٹوں میں بزنس ٹیکس کو کم کرنے کی اپنی کی گئی گھوشنا سے قدم پیچھے کھینچ سکتی ہیں۔ ٹیکس میں کٹوتی کا وعدہ لیز ٹرسٹ کے آرتھک ایجنڈے کے کیندر میں تھا۔ اسی گھوشنا کے ساتھ انہوں نے پردھان منتری پد کی دعوے داری پیش کی۔ کوارٹینگ نے اپنے پتر میں لکھا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتوں میں کئی بار کہا ہے کہ یتھاستھتی کو بنائے رکھنا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ بہت لمبے سمے سے یہ دیش کم وکاس در اور بڑھے ہوئے ٹیکس سے گرست ہے۔ اگر اس دیش کو سفل ہونا ہے تو اسے بدلنا ہوگا۔ ٹرسٹ کو بازار کی اتھل پتھل کو شانت کرنے اور اپنی پارٹی کو آشوست کرنے کے لیے اپنے آرتھک ایجنڈے کے کچھ حصوں یا پورے پلان کو چھوڑنے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ کنزرویٹیو پارٹی کے کچھ سانسدوں نے لیز ٹرسٹ کو پردھان منتری پد سے ہٹانے کے وکلپوں پر بھی چرچا کی ہے، جس سے 12 سال سے ستا میں موجود پارٹی میں مت بھید کتنے گہرے ہیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت نینترت کشمیر میں جموں و کشمیر ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا گٹھن کرنے والے پورو کانگریسی نیتا غلام نبی آزاد نے گھاٹی کے حالات پر بات کی ہے۔ بیورے کے ساتھ ہمارے سنواد داتا سپتے محمد حسن۔
جموں کشمیر ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے ادھیکش غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو راجنیتی چل رہی ہے، میں اس میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ راجنیتی کروں گا جو سچ کی راجنیتی ہوگی۔ پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ انہوں نے اس لیے پارٹی بنائی تاکہ جموں کشمیر کے جنتا کے ہت میں وہ نرنے لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جانا چاہیے، اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں ان لوگوں کو ہم سواگت کرنا چاہتے ہیں جو جموں کشمیر میں گنترنت کی بحالی کے لیے اپنا ابھیان جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دھارا 370 یا 35 کے حوالے سے میں کوئی بھی وعدہ اپنی جنتا سے نہیں کروں گا، کیونکہ یہ معاملہ مکھی طور پر سپریم کورٹ میں ہے۔ پرنتو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں جو جموں کشمیر کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔
دیکھیں، جہاں سے نان ریزیڈنٹ کا ووٹر بنانا، اس کا تو ہمیشہ ورودھ رہے گا اور ورودھ تھا، کیونکہ ہمارے 370 میں یہی سب سے بڑی سہولیت تھی کہ باہر کا کوئی نہیں بنا، اور باہر کا بھی ہم اس میں تو پھر کوئی اندازہ نہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ تحصیلدار دے، لیکن ووٹر کا حصہ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، ریاست کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری سوشل ٹینشن اس سے بہت زیادہ بڑھ
گیا۔ ادھر جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکش نے ایک بار پھر نئی دہلی پر آروپ لگایا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی کر رہے ہیں اس کے اچھے سنکیت نہیں نکلیں گے۔ پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے نئی دہلی پر آروپ لگایا کہ وہ ودھان سبھا چناؤ تبھی کرائیں گے جب انہیں یہ لگے گا کہ بھاجپا یہاں سرکار بنا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 سے جو بھی انہوں نے نرنے لیے وہ لوگوں کے ہت میں نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ کشمیر سمسیا اپنی جگہ ہے، جب تک اس کو سلجھایا نہیں جائے گا جموں کشمیر میں کیا وشو بھر میں شانتی نہیں آ سکتی ہے۔ اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم جاری ہے۔ دکشنی کشمیر کے کلگام میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاؤں وادیوں کے بیچ ایک مڑ بھیڑ میں 2 الگاؤں وادی چھاپہ مار ہتات ہوئے، جن کے نینترن سے بھاری ماترا میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ شروتو، ابھی آپ سن رہے تھے ساپتاہک کاریکرم اجول بھوش کھما کیجیے گا شروتو، ابھی آپ سن رہے تھے دینک کاریکرم راجنیتک چرچا، پر اب سنیے ساپتاہک کاریکرم اجول بھوشیہ۔
اجول بھوشیہ، دوستو، کاریکرم اجول بھوشیہ کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید مسم کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے نیتتو میں ایران اور وشو میں اسلامی سنسکرتی اور ادھیاتم کے وستار کی چرچا کریں گے۔
پچھلے کاریکرم میں ہم نے اسلامی کرانتی کے بعد ایرانی سماج میں ہونے والے مہتوپورن سانسکرتک پریورتنوں کا الیکھ کیا تھا۔ کسی بھی سماج کے استتو میں سب سے مہتوپورن تتو اس سماج کی سنسکرتی ہوتی ہے۔ ایران کی اسلامی کرانتی واستو میں ایک سانسکرتک اور دھارمک کرانتی تھی۔ وچاروں کے کھیتر میں اسلامی کرانتی کے کاریوں کے نتیجے میں آدھیاتمک اور نیتک مولیوں کا وکاس ہوا۔ اسلامی کرانتی کی آدھیاتمک اور نیتک اپلبدھیوں میں سے ایک عام لوگوں کے بیچ قرآنی سنسکرتی، نماز اور دعا کا وستار تھا۔ اسلامی کرانتی کی برکت سے قرآن لوگوں کے دھیان کا کیندر بن گیا اور وہ الگاؤ سے نکل کر لوگوں کی زندگی میں شامل ہو گیا۔
कुरान का व्यवहारिक, सामाजिक और राजनीतिक उदाहरण इस्लामी शासन के रूप में सामने आया। जब लोगों के बीच कुरान का असली स्थान स्पष्ट हो गया तो कुरान की तालीम हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण का अभियान शुरू हुआ। ईश्वर ने कुरान में संघर्ष और जिहाद के क्षेत्र में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी का उल्लेख किया। इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति की सफलता और धार्मिक सांस्कृतिक के विस्तार के बारे में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और मंझे हुए रणनीतिकार ने कहा था, आयतुल्ला खुमैनी ने पश्चिम को योजना के गंभीर संकट में डाल दिया है। उनके फैसले ऐसे होते थे कि राजनेता और राजनीतिक विश्लेषण अपनी योजनाओं में खुद को बेबस महसूस करते थे। वे दुनिया में प्रचलित मापदंडों से हटकर बात करते थे, मानो उन्हें आकाशवाणी होती थी। पश्चिम से आयतुल्ला खुमैनी की दुश्मनी का आधार ईश्वरीय शिक्षाएं थीं।
इमाम खुमैनी से मिलने के बाद उनके चरित्र का वर्णन करते हुए अमरीकी पत्रकार वेब वुड्सवर्थ ने लिखा था, इमाम खुमैनी ने जब दरवाजे से प्रवेश किया तो मुझे लगा कि वो आध्यात्मिक शक्ति का एक पहाड़ हैं। मानो उनके धार्मिक वस्त्रों के पीछे से जीवन की ज्योति चमक रही थी, जो हर देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। हाँ, वो प्रकाश की एक चिंगारी थी जिसने सभी दर्शकों के दिलों और आत्माओं में प्रवेश कर लिया था। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि वो अतीत के नबियों में से एक प्रतीत होते थे, या वो इस्लाम के मूसा थे जो इस दौर के फिरौन को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए आए थे।
इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले एक स्विस पत्रकार अहमद हुबर ने इमाम खुमैनी के बारे में लिखा था, हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हम मुसलमानों को एक ऐसा अनमोल रत्न प्रदान किया। आप ईरानी लोग अन्य मुसलमानों की तुलना में इस पर दोगुना गर्व कर सकते हो। क्रांति के संस्थापक नेता एक दिव्य आशीर्वाद और हमारे और मुस्लिम जगत के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं।
इसी तरह से इमाम खुमैनी के उत्तराधिकारी और इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई की भी दुनिया भर के कई विद्वानों और राजनेताओं ने प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने आयतुल्लाह खामनाई के साथ मुलाकात के बाद कहा था, ईरानियों और मुसलमानों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि उनके पास एक ऐसा लीडर है। मैं जैक शिराक और हेलमत कोहल जैसी हस्तियों से मिल चुका हूं, जिनसे काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन जब उनसे मिला तो मैंने महसूस किया कि इससे पहले कभी भी ऐसी किसी हस्ती से नहीं मिला था। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा कि मेरा जैसा व्यक्ति क्यों संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है। इस मुलाकात से पहले मैं जितने लोगों से मिलकर प्रभावित हुआ था, उसके बाद सभी को भूल बैठा।
इस्लामी क्रांति के नेतृत्व और लोगों के बीच संबंध का विशेष महत्व है। लोगों के बीच अपने नेता की लोकप्रियता को शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इमाम खुमैनी लोगों को इतना चाहते थे कि पश्चिमी नेता भी इसकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। फ्रांसीसी विद्वान मिशेल फुको का कहना है, आयतुल्ला खुमैनी का व्यक्तित्व एक अफसानवी व्यक्तित्व है, क्योंकि किसी भी सरकार का मुखिया या कोई भी राजनेता दुनिया भर की मीडिया के समर्थन के बावजूद ये दावा नहीं कर सकता कि उसका अपनी जनता के साथ इस तरह का गहरा जुड़ाव है। ये भावनात्मक संबंध इमाम खुमैनी के अंतिम संस्कार के समय स्पष्ट हो गया।
लेबनान के अल सफीर अखबार ने इस संदर्भ में लिखा था, उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने वाली भीड़ का ठाठे मारता हुआ समुद्र ईरानी राष्ट्र के अपने वीर और ऐतिहासिक नेता के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। ऐसे बुद्धिमान नेता की वजह से इस्लामी क्रांति का ईरान और दुनिया पर गहरा असर पड़ा। इस्लामी क्रांति के उदय के साथ ही धर्म विश्व भर के राजनेताओं और विद्वानों के ध्यान का केंद्र बन गया। इस्लामी क्रांति ने उस धर्म को कि जो अपनी प्रगति के शिखर पर पहुंचने के बाद पिछड़ता जा रहा था, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में फिर से प्रगति के मार्ग पर डाल दिया। इस्लामी क्रांति ने मुसलमानों को ज्यादा मुसलमान, ईसाइयों को ज्यादा ईसाई और समस्त ईश्वरीय धर्मों के मानने वालों के विश्वासों को मजबूत कर दिया।
इस्लामी क्रांति ने व्यक्तिगत धार्मिकता और एकांत को सामूहिक धार्मिकता और बड़े धार्मिक समुदायों में बदल दिया। इस्लामी क्रांति की बदौलत हजारों मस्जिदों और चर्चों को पुनर्जीवित किया गया। इस्लामी क्रांति ने कम्युनिस्ट देशों में भी धर्म को पुनर्जीवित किया। एक समय था जब ईरान में विश्वविद्यालयों में नमाज पढ़ने से और हिजाब करने से लोग झिझकते थे, लेकिन आज विश्वविद्यालयों की मस्जिदें सबसे ज्यादा भरी हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में कि जब पश्चिमी देशों के युवाओं में अनैतिक और अश्लीलता का प्रचार किया जा रहा है, इस्लामी क्रांति विश्व में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार का केंद्र बनी हुई है। इस्लामी क्रांति समाज में न्याय और आशा की प्रतिमूर्ति बन गई है। विश्व प्रतियोगिताओं में बहिजाब ईरानी महिला एथलीटों की भागीदारी ने हमेशा के लिए अश्लीलता के सिद्धांत को नकार दिया है। इस्लामी क्रांति ने खेलों में महिलाओं की उपस्थिति को मान्यता देकर अपनी पवित्र संस्कृति को दुनिया के सामने पेश किया है। दुनिया के सर्वोच्च राजनीतिक और वैज्ञानिक मंचों पर ईरानी शिक्षित महिलाओं की उपस्थिति ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में पश्चिमी मीडिया की भ्रांतियों पर पानी फेर दिया है।
इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि शहादत की संस्कृति का विस्तार है। इस संस्कृति के कारण ईरानी लोगों ने सम्मानजनक जीवन जिया है। इमाम खुमैनी का कहना था, शहादत की लाल रेखा आले मोहम्मद और हजरत अली की रेखा है। ये गौरव पैगंबरे इस्लाम के परिवार और उनके पवित्र परिजनों से विरासत में मिला है। शहीद एक ऐसा चिराग होता है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलता है। उस्ताद मुतहरी इस संदर्भ में कहते हैं, शहीद चिराग की भांति होता है जिसका काम जलना और फना होना होता है ताकि दूसरों को रोशनी और प्रकाश प्रदान कर सके। हाँ, शहीद मानवीय समाज का चिराग होता है। वे खुद भस्म हो गए लेकिन उन्होंने इस समाज को रोशन कर दिया। इमाम खुमैनी इस संदर्भ में कहते हैं, शहीदों की कब्र की मिट्टी के कारण लोग खुशहाल और आजाद रहते हैं। कितने भाग्यशाली थे वे लोग जो शहीद हो गए और कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने उनकी इस तरह परवरिश की।
इस्लामी क्रांति के अद्भुत और इंसानों की परवरिश करने वाले सिद्धांतों ने न केवल ईरान को प्रभावित किया बल्कि विश्व भर के विद्वानों और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी तरह से पवित्र दिलों को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया। इस्लामी क्रांति ने भ्रष्टाचार, विनाश और अश्लीलता के अड्डों को उखाड़ फेंका और लोगों के लिए मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिकता की ओर पलटने का मार्ग प्रशस्त किया। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं, इस्लामी क्रांति इस्लाम की क्रांति और कुरान की क्रांति है। इस क्रांति ने इस्लाम का परचम लहराया है। इस क्रांति का गौरव यह है कि इसने इस्लामी मूल्यों, एकेश्वरवाद, ईश्वरीय आदेशों और इस्लाम के आध्यात्मिक मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम उज्जवल भविष्य। और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति ने कहा है कि सांस्कृतिक पहचान ईरानी राष्ट्र की ताकत का स्रोत है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर नाटो सैनिकों से टक्कर हुई तो वैश्विक तबाही होगी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने पर विचार करें और तुर्की में कोयले की खदान में होने वाले भीषण विस्फोट में 40 लोगों की मौत हो गई। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभरात्रि।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ